प्रिय मित्रों नमस्कार। दोस्तों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत में लोकतंत्र में राजनीति इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए इससे पहले जो दूसरे समाचार हैं उन पर थोड़ी सी एक नज़र डाल लेते हैं। मैं आज आपको इकोनॉमिक टाइम्स का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें खासकर हमारे जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जो अधिकरण होते हैं, उनमें होने वाली नियुक्तियों को लेकर टिप्पणी की गई है। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले मैंने चर्चा भी की थी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जानना चाहा है कि हमारे इतने ट्रिब्यूनल्स हैं, जिसे हम हिंदी में अधिकरण कहते हैं, उनमें इतने सारे पद खाली पड़े हुए हैं। इस एडिटोरियल कमेंट में 350 के आसपास पद की बात कही गई है, खाली पड़े हुए हैं और आप इन्हें भर नहीं रहे हैं। क्या मतलब है, आपका मकसद क्या है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब चाहा था। इससे पहले ही सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है और उसमें 31 अपॉइंटमेंट्स कर दिए हैं। चलिए एक छोटी सी खबर है, लेकिन दोस्तों इसके माध्यम से हम खासकर जो हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं और हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसके बारे में विचार कर सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में आपने सुना है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो हमारे दूसरे कोर्ट हैं उन सब में भी खाली पदों को लेकर चर्चा होती है। और केवल यही नहीं बल्कि जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप देखिए कि कोविड के दौरान पता लगा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के ढेर सारे पद खाली हैं। आप IIIT और IIM जो हमारे इंटरनेशनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पता लगेगा कि ढेर सारे पद खाली हैं। सोच करके देखिए, तो अगर पद सृजित किए गए हैं तो या तो वो गलत किए गए हैं, उनकी जरूरत नहीं थी लेकिन बना दिए गए, और अगर बना दिए गए हैं उनकी जरूरत है तो वो भरे जाने चाहिए, क्योंकि बिना व्यक्ति के तो संस्थान कैसे काम करेगा। और आप देखिए कि न्यायिक विलंब को लेकर के लगातार बातें होती रहती हैं कि जुडिशरी में देरी हो रही है, देरी हो रही है, देरी से न्याय मिलने का मतलब ही होता है कि न्याय का न मिलना। तो जब हमारे पास न्यायाधीश ही नहीं होंगे तो न्याय कैसे हो सकेगा। इस तथ्य को लेकर के आप थोड़ा सा इस पर विचार करें। और अभी जैसा कि मैंने कहा था कि सरकार एक एक्ट लेकर के आई है, संशोधन एक्ट, उसमें बकायदे अपॉइंटमेंट्स वगैरह की चर्चा की गई है कि इसकी एक स्क्रीनिंग कमेटी होगी, वो फिर रिकमेंड करेगी और इस रिकमेंडेशन के आधार पर सरकार अपॉइंट करेगी। इसके बारे में इस एडिटोरियल कमेंट में कुछ बातें कही गई हैं, इसे आप देख लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट इशू है। दोस्तों एक नाम आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा और बहुत ही प्रोमिनेंटली ये नाम आज के अखबारों में उभरा है, और यह है एमा राडुकानू। शायद आप समझ गए होंगे, याद आया, एमा राडुकानू, इन्हें कहा गया है टेनिस की नई मल्लिका। टेनिस, अभी US ओपन टेनिस चैंपियनशिप हुई थी, इसमें विमेन सिंगल्स का खिताब एमा राडुकानू को मिला है। ये ब्रिटेन की रहने वाली हैं और उनकी सफलता पर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें बधाई दी है। देखिए वैसे तो US टेनिस हर साल होता है और हम लोग इस पर बात भी नहीं करते, लेकिन चूंकि अखबारों ने बहुत ही प्रोमिनेंटली इसे लिया है तो डेफिनेटली फिर थोड़ा सा आपके लिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और एक बड़ी बात यह भी है कि जो एमा राडुकानू हैं केवल 18 साल की हैं और इन्होंने कुछ ज़बरदस्त किस्म के रिकॉर्ड बनाए हैं। मैं उन रिकॉर्ड के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, है ना, कितने मैच खेले और सभी ड्रॉ किए, यहाँ तक कि किसी मैच में उन्होंने एक भी अपना, आप यूं कह लीजिए, सेट लूज नहीं किया, उम्र इनकी बहुत कम है, इस तरह की बातें इन्हें एक तरीके से स्टार का दर्जा दे देती है, केवल 18 साल की हैं। और US जो ओपन हुआ था ये पहली बार ऐसा हुआ है कि विमेंस का फाइनल दो ऐसे खिलाड़ियों के बीच हुआ है जो इनफैक्ट आप यूं कह लीजिए कि बहुत ही हाई रैंकिंग में नहीं है, यानी कि सोच करके देखिए कि इसके बावजूद वहां से चैंपियंस निकल रहे हैं। तो बस थोड़ा सा आप नाम याद रख लीजिए, एमा राडुकानू, टेनिस खिलाड़ी, ब्रिटेन की रहने वाली और US ओपन विमेन्स सिंगल की चैंपियन। आज मैं आपको एक मशीन के बारे में बता रहा हूं, नई मशीन स्थापित हुई है और इसका नाम है ओर्का। ये बड़ी अद्भुत मशीन है और इसको अब दुनिया बड़ी हसरत की निगाहों से देख रही है, और हसरत की निगाहों से इसलिए देख रही है कि इस मशीन में कार्बन उत्सर्जन को सोखने की क्षमता है, या यूं कह लीजिए कि जो ग्रीन हाउस गैसेस वायुमंडल में छोड़ी जाती हैं उनको यह अवशोषित कर सकती है। और यह मशीन अभी कुछ दिनों पहले ही पिछले सप्ताह आइसलैंड में स्थापित की गई है। ओरका इसका नाम है। कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। दोस्तों, ये मशीन काम कैसे करेगी? कुछ नहीं, आप ये कह लीजिए कि इसमें जो उसके जो पंखे लगे हुए, जो फैन चलेगा, तो उस फैन में कुछ इस तरह के धातु लगे हुए हैं जो वायु को शुद्ध कर सकते हैं। ये वायु को कैसे शुद्ध करेंगे, इसके टेक्नोलॉजी को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी प्री में इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो विशालकाय पंखे हैं, ये वायुमंडल की हवा में घूमेंगे और वहां से फिर उस हवा को एक, आप यूं कह लीजिए कि जलीय विलयन है या लिक्विड है कह लीजिए, उसमें डाल देंगे उस हवा को। और जब वो हवा वहां पहुंचेगी तो उस हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सोख ली जाएगी, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड सोख ली जाएगी, अब इसका जो कलेक्शन होगा, संग्रह होगा, स्टोर होगा, इसको या तो जमीन के नीचे पहुंचा दिया जाएगा, या फिर यह है कि इससे फिर दूसरी दूसरी चीजें, बकायदे केमिकल रिएक्शन के जरिए कुछ चीजें बनाई जा सकती हैं। इससे ईंधन तैयार किया जा सकता है, इससे बकायदे बिल्डिंग मटेरियल्स बनाए जा सकते हैं, कुछ केमिकल्स बनाए जा सकते हैं। कल सोच करके देखिए कि यह कितनी बड़ी बात होगी, और खासकर उस दौर में जबकि हम ग्लोबल वार्मिंग के संकट से गुजर रहे हैं। लेकिन इसकी एक सीमा है। ये जो मशीन बनाई गई है, इसकी जो लागत आई है दोस्तों, लगभग 100-125 करोड़ के आसपास है, इस बीच में कहीं कुछ है, लेकिन इसकी जो क्षमता है वो बहुत कम है। एक मशीन जो अभी लगाई गई है, एक साल में करीब 4,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकेगी, 4,000 टन। चलिए, ये एक आंकड़ा हुआ, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, उसने अभी एक आंकड़ा दिया है कि पिछले साल विश्व में कुल जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, वो था 34.7 अरब टन। 34.7 अरब टन इतना उत्सर्जन हुआ था, और उसमें से इसकी जो सोखने की क्षमता है वो केवल 4,000 टन है। मुझे लगता है कि अगर हम कहें ऊंट के मुंह में जीरा, तो शायद जीरा भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर पूरी दुनिया में इसका जाल बिछा दिया जाए तो हम सफल हो सकते हैं। तो कम से कम एक आशा की किरण दिखाई दी है। इस मशीन का नाम है दोस्तों ओरका। अब मैं आता हूँ आज के मुख्य विषय पर। इस मुख्य विषय के चुनाव करने के पीछे जो मेरा कारण है वह है, अभी गुजरात में आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदले गए हैं और भूपेंद्र पटेल जी नए मंत्री बनाए गए हैं। जब आप अखबारों में इस तरह की खबरें पढ़ते हैं तो देखिए, अखबार तो अपने ढंग से लिखते हैं, आपने पढ़ा कि वो पहली बार विधायक बने हैं, इससे पहले वो कभी मंत्री नहीं रहे और उनको सीधे सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो दिमाग में ये बात आती है कि यार, जिनके पास अनुभव नहीं है उन्हें कैसे इतना महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। फिर आप अखबारों में ये भी पढ़ेंगे कि वो पटेल समुदाय के हैं और खासकर गुजरात में पटेलों की संख्या बहुत अधिक है, पटेलों को साधने के लिए अब पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया है ताकि उन्हें वोट मिल सके, पटेलों के वोट मिल सके और फिर से चुनकर आ सके, क्योंकि लगभग 1.25 साल के बाद गुजरात में चुनाव होने हैं। तो इन सब को सुनने के बाद आपको लगता है कि यार, ये क्या डेमोक्रेसी है, ये क्या लोकतंत्र है। फिर आप अखबारों में ये भी पढ़ रहे हैं कि केंद्र से कुछ लीडर गए और लीडर ने वहाँ विधायकों से बातचीत की और उसके आधार पर एक नाम प्रपोज किया गया, जो जा रहे थे मुख्यमंत्री उन्होंने एक नाम दिया और इसके बाद उसका समर्थन कर दिया गया और मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया। फिर आप पाते हैं कि यार, वहाँ जो MLA चुन करके आए थे उनकी पार्टी के, उनसे कितनी बातें पूछी गई, उनको मतदान का कितना अधिकार दिया गया कि वो अपना नेता चुन सकें, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो सीधे सीधे सेंटर की देन है कि वहाँ से हाईकमान ने कुछ लोगों को भेजा और नाम भी सब कुछ सेलेक्टेड है, सब कुछ है, तो फिर निर्वाचन कहाँ है? और अगर पार्टी के अंदर इस तरह के निर्वाचन की पद्धति नहीं है तो फिर लोकतंत्र कहाँ है, है ना? इस तरह की बातें दिमाग में आती हैं। बस इसको क्लियर करने के लिए मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो डेमोक्रेसी है, दुनिया की चाहे कोई भी डेमोक्रेसी हो, बिना पॉलिटिकल पार्टी के काम नहीं कर सकती, राइट? पॉलिटिकल पार्टी होंगी ही होंगे, और हर पॉलिटिकल पार्टी का जो मकसद होता है, देखिए, उनका, उनके पास अपना एक विजन है, उनका अपना एक घोषणा पत्र है, कि हम ये करेंगे, तो कैसे करेंगे? सत्ता में आकर के करेंगे, और वो सत्ता से बाहर रहेंगे तो ठीक है, वो सरकार की आलोचना करते रहेंगे, लेकिन पर्पस तो यही होता है कि हम सत्ता में आएं और हमारा जो विजन है हम उस विजन को मटरलाइज करें, ये उनका पर्पस होता है। इसका मतलब है सत्ता में आना, और सत्ता में आने का जो आधार है, जो उपाय है, वो यही है कि मतदाता उनको वोट दें, वो बहुमत में आए। तो जब मतदाताओं से वोट लेने की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से फिर उन्हें दुनिया भर के समीकरणों पर काम करना पड़ता है कि ये जो मतदाता हैं हम पर कैसे विश्वास करेंगे, हमें कैसे वोट देंगे। तो मान करके चलिए कि अगर लोकतंत्र है तो वहां वोट की राजनीति रहेगी ही रहेगी, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से रहेगी, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। अभी एक फिल्म आई है बेल बॉटम, अगर आपने वो फिल्म देखी हो तो उस सीन को याद कीजिए जबकि हमारी प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में बैठी हुई है, उनके साथ कुछ लीडर्स बैठे हुए हैं, मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, और इस पर बहस हो रही है, बातचीत हो रही है कि जो प्लेन हाईजेक हो गया है उसे, उसमें जो यात्री हमारे हैं उन्हें कैसे बचाया जाए, अब क्या किया जाए। तो उसमें एक जो पॉलिटिकल लीडर है वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो यात्रियों को किसी हालत में बचाना ही बचाना है, क्योंकि एक साल के बाद चुनाव होने हैं, और यदि यात्रियों को कुछ हो गया तो हम पब्लिक को क्या जवाब देंगे, फिर हमारी पार्टी क्या कैसे सर्वाइव करेगी। तो आप देखिए कि वो जो एंगल है वो पार्टी के सर्वाइवल का ही है, हालांकि वो भी गलत नहीं है, क्योंकि जो लोकतंत्र है वो दबाव की राजनीति ही है, लोगों का ही दबाव है। अब वो दबाव किस तरीके का है, किस तरीके से काम करता है, वो एक अलग बात है। दोस्तों, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसके माध्यम से मैं केवल आपके दिमाग में ये तथ्य डालना चाह रहा हूं कि जब भी लोकतंत्र में राजनीति की बात आती है तो आप बायस्ड तरीके से मत सोचिएगा कि ये तो बुरी चीज है, ये तो गलत चीज है, ये तो राजनीति की जा रही है, ऐसा थोड़ी होता है, तो फिर राष्ट्रहित कहां है, तो समाज का हित कहां है। आपको थोड़ा सा बैलेंस होकर इस पर विचार करना होगा। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं नीलेश चौधरी, सूरज कुमार, गौरव मेघवाल उदयपुर से, और पायल खत्री उदयपुर राजस्थान से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।